ब्रह्म कुमारीज के आर्ट एंड कल्चर विंग द्वारा आयोजित इस ई कॉन्फ्रेंस में आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, जिसका विषय है रोल ऑफ आर्टिस्ट इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। वर्तमान समय चुनौती भरी परिस्थितियों में कलाकारों की भूमिका। अति हर्ष की बात है कि अरबों लोगों के जीवन में उमंग उत्साह भरने वाले, खुशी देने वाले कलाकार आज इस ई कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी महान कलाकारों का तथा इस ई कॉन्फ्रेंस में जुड़ रहे सभी भाई बहनों का, आप प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत शुभ स्वागत है। ब्रह्म कुमारीज का आर्ट एंड कल्चर विंग कलाकारों का जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए कला जगत में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आइए इसकी एक झलक देखते हैं। आर्ट एंड कल्चर विंग के कार्यों का अवलोकन कराने के लिए ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में स्थित ज्ञान सरोवर कैंपस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीके दयाल भाई। आप आर्ट एंड कल्चर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और पिछले 30 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दयाल भाई से अनुरोध है, आर्ट एंड कल्चर विंग के कार्यों का नजारा हमें दिखाएं।
ओम शांति। आप सब कलाकार और सभी आत्माएं, वैसे बेसिकली कलाकार ही है हम सब आत्माएं, आप सबका इस 2020 के कला और संस्कृति प्रभाग के सम्मेलन में आप सबका स्वागत है। हर साल माउंट आबू में ये ज्ञान सरोवर कैंपस में हमारी कॉन्फ्रेंस मई एंड या जून बिगिनिंग में जरूर होती है। पिछले 30 सालों से ये प्रभाग निरंतर कलाकारों की सेवा के लिए कार्यरत है। हर साल में एक कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में और हर दो साल के अंतराल में नीचे शांतिवन में 4,000-5,000 कलाकारों का सम्मेलन हम पिछले 30 सालों से करते आए हैं। दूसरा, कल्चरल विंग फिर अभियान भी निकालती है। अभियान का मतलब होता है हम एक एरिया ले लेते हैं जहां हमारे सेंटर्स होते हैं और वो सेंटर्स वहां पर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे दिल्ली में हो गया तो दिल्ली में और दिल्ली के आजू बाजू में करीब 10-15 सेंटर्स, 10-12 दिन का प्रोग्राम इस तरीके से हम लोग करते हैं। और शाम के समय सब लोगों के लिए संगठित बड़ा प्रोग्राम होता है और दिन भर में फिर आर्ट के जो कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक्स है जहां पर ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस आदि सिखाया जाता है, वहां पर भी जो हमारी टीम है करीब 10-12 लोगों की, भाई बहनों की, बीके भाई बहनों की टीम होती है, वो इसलिए वहां पर जाके हम लोग लक्ष्य क्या है तो वहां जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या अपने बुद्धि में लेके पढ़ रहे हैं। एक तो कहते हैं कि दे वॉन्ट टू मेक द प्रोफेशन एज आर्ट, किसी वो आर्ट का वो प्रोफेशन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनके जीवन में कभी कुछ अप एंड डाउन हो जाए तो उससे वो डील कैसे करें। तो ये चीज हम लोग जो स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, बच्चे लोग जाते हैं, आर्ट स्कूल के बच्चे लोग जाते हैं, हम उनको समझाते हैं। हुआ ऐसा था कि कुछ समय पहले हम बॉम्बे में किसी बड़े फिल्म कलाकार को मिल रहे थे तो उन्होंने हमें यह सजेशन दिया था कि जहां पर ये ट्रेनिंग होती है, जहां पर एक्टिंग स्कूल्स वगैरह हैं, वहां पर आप जाइए तो वो लोग एक्टिंग तो सिखाएंगे, अपनी कला से संबंधित बातें तो सिखाएंगे, लेकिन लाइफ में कभी अप एंड डाउन हो जाए, ये तो जीवन काल है, एक समय तो एक समान रहता नहीं है, तो उस समय में हम अपने आप को कैसे संभालें, हम क्या चिंतन करें, क्या हमारे थॉट प्रोसेस हो उस समय, तो पॉजिटिविटी क्या चीज है? अगर हम परिस्थिति को एज इट इज देखते हैं तो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन हम अपने स्वचिंतन से अगर हम और उसका पॉजिटिविटी देखें, डिफरेंट एंगल से देखें, तो हमको जरूर उसमें कुछ न कुछ पॉजिटिविटी नजर आती है। हम देखते हैं समाज के अंदर कई प्रकार के लोग हैं, कोई अपंग है, कोई अंधे है, किसी का कुछ एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है, तो क्या वो हताश हो जाते हैं? हमारे सामने ऐसी कई एग्जाम्पल है कि लोगों के हाथ नहीं है, पांव नहीं है, लेकिन सारे विश्व में छाए हुए हैं। एक बहन है जो एक टांग से हिमालय चढ़ी है, क्या जज्बा होगा, क्या सोच होगी उनकी, क्या हम ऐसे पॉजिटिव सोच नहीं सोच सकते हैं अपने जीवन के अंदर? तो ये इस संस्था का और खासकर आर्ट एंड कल्चर विंग का ये लक्ष्य है कि कोई भी प्रकार का कलाकार हो, चाहे वो ड्राइंग पेंटिंग में हो, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो फिल्म में हो, एक्चुअली एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन आर्टिस्ट। हर एक आत्मा अपने आप में एक कलाकार है। खाना बनाने की भी कला है, खाना बनाने की कला क्या, खाना खाने की भी कला है। तो हम इस बात पर ध्यान देते हैं और ये हम हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम हमारे पूरे लाइफ को, पूरे जब से हमारा ये शरीर हमको मिला है तब से ये शरीर जब तक हमारे पास रहेगा, इसकी पूरी लाइफ को हम प्लान करें। हमारा चाइल्डहुड कैसा था, हमारा जो मिडिल एज है वो हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा ओल्ड एज हमारी कैसी होनी चाहिए, तो पूरा हम अगर अपने लाइफ को प्लान करें तो हम कभी डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि आगे हमारे पास में हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, सोचने के लिए लक्ष्य है। जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, तब तक हम बार बार रुकेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार दिल शिकस्त होंगे। तो ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, ये तो पहली ई कॉन्फ्रेंस है। अभी कोरोना ने हमें क्या सिखा दिया और हम लोगों का जीवन शैली इतनी अलग हो गई है, लेकिन फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब हो गई है, इसमें भी बहुत सारी अच्छाइयां हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इनको लेकर हम साथ में चल रहे हैं। रोज एक नई उमंग उत्साह, रोज एक नई बातें हमारे जीवन में आ रही है और हम उसके साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाते चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये समय जो है, हर समय वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो समय है हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भाई बहनों के पास में काम है वो काम भी करें, लेकिन साथ में हमारे जीवन में आध्यात्मिकता अर्थात अध्ययन आत्मा का, अर्थात अध्ययन स्वयं का, अब हमें समय मिला है, ये समय को हम गवाए नहीं और अपने अंदर जाके अपने आत्मा की उन्नति के लिए हम जरूर राजयोग सीखें। ये ऐसी विधि है जिसमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इसमें धन खर्चा नहीं होता है, आप अभी तो घर में बैठे बैठे YouTube के द्वारा या दूसरे हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उनके द्वारा आप सुनिए, नोट कीजिए जो भी चीज आपके काम की है। लाखों लाखों लोगों ने इस चीज का अभी फायदा लिया है, राजयोग के द्वारा लाखों लोगों ने फायदा लिया है। तो अभी कलाकार वर्ग सिर्फ ये सोच लेता है कि मैं बिजी हूं, मुझे शूटिंग में जाना है। हाँ, जाना है, वो सब करना है, जैसे वो इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट है, सांस लेना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए आध्यात्मिकता भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आध्यात्मिकता को प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति कभी उदास नहीं होता है, कभी दिल शिकस्त नहीं होता है, हमेशा उमंग उल्लास में रहता है। तो उमंग उल्लास हमारे जीवन में अति आवश्यक है। मैं सब आप भाई बहनों से गुजारिश करता हूं, हमेशा खुश रहें, उमंग उल्लास में रहें, खुद भी रहें और औरों को भी रखें। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दयाल भाई का हमें विंग की सेवाओं से अवगत कराने के लिए। हमारा सौभाग्य है कि यह आर्ट एंड कल्चर विंग की ई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन विश्वव्यापी आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी कर रही हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल चीफ हैं, दिव्य अनुभूतियों से संपन्न हैं आप। आपके सानिध्य में हर जीवन को एक नया सुख की दिशा मिलती है। आज हमारे बीच आर्ट एंड कल्चर विंग की ई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए अपने अनमोल आशीर्वचनों द्वारा हमें आशीष प्रदान करेंगी, उज्जवल व्यक्तित्व अलौकिक आभा प्रसारित करती हुई दादी जी।
ओम शांति। हम सबके प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा और नई दुनिया के रचयिता प्यारे ब्रह्मा बाबा की प्यारी संतान, सभी कलाकार भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हम सब सृष्टि मंच पर आत्मा रूपी कलाकार है, अपना शरीर रूपी वस्त्र पहनकर हम सब पाठ बजा रहे हैं, लेकिन उनमें भी आप विशेष कलाकार हैं जो आज की दुनिया में सब आपको देखना चाहते हैं और देखते भी हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। आप जो करते हैं वही सब फॉलो भी करने लगे हैं। इसलिए आज के समय में आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसा हम करेंगे हमें देखकर सभी करेंगे। आज संसार में सभी दुख अशांति चिंता और निराशा में है, उनमें आशा का संचार करने के लिए पहले आप कलाकारों को परमात्मा शिव से शक्ति लेकर स्वयं में अर्थात आत्मा में शक्ति भरनी होगी और वह शक्ति आएंगी आध्यात्मिक ज्ञान से जो स्वयं परमपिता परमात्मा अब अवतरित होकर ब्रह्मा के मुख से सुना रहे हैं। इस संसार का कल्याण केवल एक परमात्मा ही कर सकते हैं और वह अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से हम अलौकिक भाई बहनों के द्वारा करा रहे भी हैं। हम सभी आपकी दैवी बहने एवं भाई पूरे भारत सहित सारी दुनिया को स्वर्णिम दुनिया बनाने की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारी आत्माएं स्वयं में शक्ति भरकर दैवी गुण धारण कर रही हैं। हम आप सभी कलाकारों का स्वागत और आवाहन करते हैं, क्योंकि जब हम विपरीत वातावरण में परिस्थिति में शक्तिशाली बने रहेंगे तो ही हम औरों को शक्ति दे सकेंगे। हम सब जानते हैं कि आज जो भी सब समस्याएं हैं वह हमारे ही कमजोरियों के कारण है, इसलिए हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। कलाकारों की इस कॉन्फ्रेंस में सभी कलाकार ऐसा संकल्प करे कि हम हर रोज ईश्वरी ज्ञान और सहज राज्यों का अभ्यास करेंगे। सभी कलाकार समय निकालकर हर दिन मन में शुभ भावना शुभ कामना रखकर सभी को शांति की शक्ति का योगदान देंगे। इस सेवा से अपना कल्याण तो होगा ही, साथ ही साथ सारे संसार को आशा की किरणें मिलेंगी और नई दुनिया की सभी को झलक भी दिखाई देंगी। हमें उम्मीद है कि आप कलाकार मिलकर परमात्मा के विश्व नव निर्माण के कार्य में पूर्ण सहयोगी बनेंगे। ओम शांति शांति शांति।
अंतःकरण से धन्यवाद परम आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का। आपके आशीर्वचनों से हम धन्य धन्य हो गए। कलाकार हर मानव जीवन में एक विशेष रोल अदा कर रहे हैं। जब कभी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स या चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, तो ये कलाकार अपनी कला के माध्यम से हमारा अटेंशन डाइवर्ट कर हमें लाइट फील कराते हैं और वर्तमान समय की चैलेंजिंग सिचुएशंस में उन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। इसी विषय पर और प्रकाश डालेंगी बी के कुसुम दीदी। आप आर्ट एंड कल्चर विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं। 5 दशकों से आप अपनी अमूल्य सेवाएं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दे रही हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने सराहनीय कार्य के लिए आपको बलराज सहानी राष्ट्रीय एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीदी जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि हमें कॉन्फ्रेंस के सब्जेक्ट की गहराई में ले जाएं।
ओम शांति। आज सबसे पहले मैं परम कलाकार शिव बाबा को नमन करते हुए आप सभी कलाकार भाई बहनों का तथा सम्माननीय अतिथियों का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज ईश्वरीय प्रेम के अनुसार परमात्मा कलाकार से सुख शांति का अनुभव करते हुए आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। आज के समय अनुसार कलाकारों का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। कलाकार ऐसा वर्ग है जो समाज को आनंद का अनुभव कराता है, खुशियों का अनुभव कराता है। आज के समाज के लिए कलाकार वर्ग देवता से भी ज्यादा प्रिय है, अपने दिल में उनको स्थान देता है। कलाकार खुशियों की उपचार करता है। कहा जाता है कि आज का कलाकार कल को आकार देने वाला है, इसीलिए कलाकार के पास ऐसी कला है जो कला के माध्यम से सबको बहुत खुशियां लुटाता है। लेकिन जब कभी कभी ऐसा समाचार सुनते हैं न्यूज चैनल के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा, तो ऐसा लगता है कि हमारा इतना बड़ा कलाकार सबको खुशियां बांटने वाला, सबको प्रसन्नता देने वाला, सबका मन हल्का करने वाला, ये कलाकार आज क्यों इतना दुखी हो गया? क्यों? क्योंकि जो समाज की जो आंखें हैं, वो कलाकारों के तरफ इस प्रकार से निहारती है कि उनको लगता है कि कलाकार जो हमें प्रेरणा देता है, उस प्रेरणा के अनुसार वह भी उसी तरीके से अपने जीवन को कोई कोई ढालना शुरू कर देता है। इसीलिए हमारा कलाकार वर्ग यह न भूले कि हम कलाकार समाज के सामने एक बहुत बड़े उदाहरण के तौर पर है। हमें कई लोग, कई आत्माएं देखती है, प्रेरणा लेती है। इसीलिए हमारी जैसी हम कला प्रस्तुत करते हैं, तो कला के साथ साथ अगर हम आध्यात्म को जोड़े, परमात्मा के साथ अपना बुद्धि योग जोड़े, तो कलाकार अपनी सुरक्षा अपने आप ही कर सकेगा। और उसके लिए उसके मन में कई प्रकार के जो विचार आते हैं, मनुष्य दुखी कब होता है, कलाकार भी दुखी कब होता है, जब उसका मन गलत सोचता है या निगेटिव सोचता है। अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग करे, पॉजिटिव सोचे, हर बात में पॉजिटिव देखे, चाहे वो हानि लाभ हो, चाहे जय पराजय हो, क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य जीवन एक संघर्षमय जीवन है। हर क्षेत्र के अंदर संघर्ष होता है, कलाकारों के अंदर भी कला के क्षेत्र में संघर्ष चलता है। लेकिन हमने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी अपने अंदर का उमंग उत्साह कम नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने विचारों में निगेटिव पना नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि निगेटिव से ही मनुष्य कमजोर हो जाता है। जितना जितना वो निगेटिव सोचता है, उतना उतना वो कमजोर होता जाता है और अपने को हिम्मतहीन समझता है, कमजोर समझने लगता है, तो फिर कोई ना कोई गलत विचार उसके मन में आ जाता है और फिर उसी आधार से कोई ना कोई ऐसा गलत कर्म हो जाता है कि जो समाज भी सोचता है कि इतना अच्छा कलाकार और इसने ऐसा क्यों कर लिया है, इतना इसको क्या दुख हो गया था। तो इसीलिए हम कलाकार आज से यह प्रतिज्ञा करें, दृढ़ता से अपनाएं कि मुझे किसी भी हालत में अपने आप को इस प्रकार के ख्यालात में नहीं डुबोना है। और उसके लिए एक ही बात है, इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर जो राजयोग सिखाया जाता है, ये राजयोग अपने आप में एक बहुत बड़ी श्रेष्ठ जीवन जीने की कला है, चरित्रवान जीवन जीने की कला है। और इस राजयोग को अगर हम अपने जीवन में लाते हैं, अर्थात परमात्मा से अपना बुद्धि योग जोड़ते हैं, तो परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ने के कारण हमारी अपने आप ही रक्षा हो जाती है। कई भी प्रकार के ऐसे गलत विचार नहीं आएंगे जो हम आज कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। इसलिए समाज को एक अच्छा संदेश मिले, अच्छा मैसेज मिले, जैसे हम कला को देखते हैं, कला को प्रस्तुत करते हैं, वैसे कला के साथ कलाकारों को भी लोग देखते हैं और कला के आधार से ही कलाकारों का महत्व होता है। लेकिन आज का जो कलाकार है, चाहे वो कोई भी कला हो, नृत्य की हो, गीत की हो, अभिनय की हो, जो भी कला है, उस कलाकार के साथ जो कलाकार जुड़ा हुआ होता है, उसको समाज अलग दृष्टिकोण से देखता है और उसके अंदर की जो खुशियां है वो समाती नहीं है, उसको आनंद आता है, बार बार उस कलाकार के बारे में सोचता है। कभी कभी कलाकार को जो है वो देखते हुए प्रेक्षक को भी प्रसन्नता हो जाती है। और ऐसा कलाकार अगर कभी दुखी हो जाता है या कुछ कर लेता है, तो फिर समाज के विचार चलते हैं और फिर समाज भी या जो भी वर्ग है वो भी दोष देना शुरू कर देते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, इसको ये नहीं रोल मिला इसीलिए ये दुखी हो गया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम किसी पर दोष न धरे, क्योंकि अगर हम हिम्मतवान हैं, हम शक्तिशाली हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, समाज तो कुछ भी कहता है, अच्छा भी कहता है तो भला बुरा भी कहता है, लेकिन हम अपने अस्तित्व में रहे। क्यों? क्योंकि अगर परमात्मा चिंतन, आत्म चिंतन अगर कलाकार कला के साथ करता है, बीच बीच में उसका अभ्यास करता है, तो अवश्य वो अपने आप को सेफ रख सकता है, अपने आप की रक्षा कर सकता है। इसीलिए आज जो भी बातें हो रही है, जो भी चुनौतियां कलाकारों के सामने आ रही है, उसका सामना करने के लिए उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक शक्ति कैसे आएगी? जब अपने मन के विचारों में परिवर्तन लाएंगे, अर्थात ही मन में पॉजिटिव विचार करेंगे, तो भले निगेटिव विचार कभी आ जाते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव विचार करेंगे तो निगेटिव खत्म हो जाएगा और अपने आप ही हमारे अंदर वो शक्ति पैदा होगी, वो मनोबल पैदा होगा, जिस आधार से हमारा मन शक्तिशाली बन जाएगा। और शक्तिशाली मन कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं ले सकता है, वो मन अच्छा ही निर्णय लेगा और अच्छा ही कर्म करेगा, उसको अच्छा ही फल मिलेगा। इसीलिए कलाकार भाई बहनों को मेरी नम्र विनती है कि कोई भी ऐसा काम न करे जो समाज को गलत मैसेज मिले। इसलिए बार बार आप सभी का फिर से अभिवादन है, अभिनंदन है, हमारी शुभ भावना शुभकामना है कि आप अपने कला के द्वारा और आगे बढ़ो, अपनी तरक्की करो, लेकिन जो ऐसी बातें हैं उनसे बचो कि जो आपका मन दुखी हो, आपका मन दुखद हो जाए और फिर समाज को गलत संदेश चला जाए। इसलिए इस बात का आप सभी कलाकार ध्यान रखेंगे, यह मैं अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।
तह दिल से शुक्रिया कुसुम दीदी का हमको आज के विषय का स्पष्टीकरण देने के लिए। बहुत खुशी और सम्मान की बात है इस ई कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी शुभकामनाएं देने हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर कविता जैन जी हमसे रूबरू हो रही हैं। आइए सुनते हैं कविता जी से।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू के कला एवं संस्कृति प्रभाग की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय ऑनलाइन वेबिनार से जुड़े सभी कलाकार भाई बहनों को मेरा नमस्कार। ओम शांति। आज कोरोना महामारी के समय सारी दुनिया भयभीत और परेशान है और ऐसे समय में बड़े हर्ष का विषय है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान वेब टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्यार और शांति का संदेश दे रहा है और उत्साह का वातावरण पैदा कर रहा है। मुझे अनेकों बार ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज मुझे बताया गया कि आज भारत के उन तमाम कलाकारों के लिए ये वेबिनार रखा गया है जिन्होंने लॉकडाउन के समय सभी दुखी परेशान वे नाउमीद लोगों में अपनी कला के द्वारा चेहरे पर खुशी वे उमंग लाने का काम किया है। बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देशभर के डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मचारी आदि ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में दिन रात एक करके देश में इस महामारी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के कलाकारों ने यह है सुनिश्चित करने में सरकार का सहयोग किया है कि लॉकडाउन के समय में गरीब व जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो। मैं उन सभी कलाकार भाइयों और बहनों को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए धन्यवाद करती हूँ और आने वाला समय मुझे लगता है जो कि और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भरा है और मुझे उम्मीद है कि वे सभी अपनी सक्रिय भूमिका इसी तरह से निभाते रहेंगे। मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज के इस उद्देश्यपूर्ण सफल वेबिनार के आयोजन के लिए मैं संपूर्ण ब्रह्मा कुमारी संस्थान और खास तौर से कला एवं संस्कृति विभाग की उपाध्यक्षा बहन राजयोगिनी कुसुम, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर दयाल भाई, राजयोगी संतोष भाई, वे भी खास तौर से बधाई के पात्र हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं सभी कलाकारों को आपकी शुभकामनाएं देती हूँ। ब्रह्मा कुमारी करनाल की निर्देशिका वे कला संस्कृति की जोनल कोऑर्डिनेटर प्रेम बहन जी, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में अपना संदेश देने के लिए आमंत्रित किया है, उनको भी मेरी शुभकामनाएं व आभार। ओम शांति।
थैंक यू सो मच कविता जी फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल व्यूज। अब आपको हम ले चलते हैं कलाकारों की नगरी मुंबई में। वहां से ब्रह्मा कुमारी के विले पार्ले स्थित राजयोग मेडिटेशन सेंटर की डायरेक्टर पी के योगिनी दीदी हमसे अपने अनुभव शेयर करेंगी। आप मुंबई अंधेरी में स्थित BSES MG ग्लोबल हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी हैं। आप ब्रह्मा कुमारी की ही एक और विंग बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। अपनी सेवाओं के लिए आपको अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रेस्टीजियस 8th इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स शामिल है। आइए लाभ लेते हैं दीदी के अनुभवों का।
ओम शांति। आज हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना रूपी महामारी समस्या का सामना कर रहा है। ऐसे चुनौती भरे समय में हमारी आर्ट और कल्चरल विंग ने सुंदर ऑनलाइन ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। हमें बहुत ही खुशी है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश विविध कला एवं संस्कृति का अनोखा संगम है, जहां पिछले 5000 वर्षों से रचनात्मक एवं नवीनतम विशेषताओं से भरकर मानव जाति की सेवा कर रहा है। जब भी मनुष्य जीवन में अपनी भाग दौड़ भरी दिनचर्या से एक चेंज व राहत का अनुभव करना चाहता है, तो ऐसे समय पर कई पौराणिक कथाएं तथा वास्तविक संसार में हो रही अनेक घटनाओं से रमणीकता के द्वारा सहज तरीके से ड्रामा, संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर बड़ा योगदान आर्ट एंड कल्चर विंग दे रहा है। आज जीवन में आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। देखिए, आज हमें कोई भी बड़ा कल्चरल प्रोग्राम करना होता है, कोई ड्रामा करना होता है, तो भी हमें 3 पावर की आवश्यकता रहती है। पहला, इलेक्ट्रिक पावर। उसके बगैर आप स्टेज पर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा, मेन पावर। आपको अच्छे अच्छे आर्टिस्ट चाहिए जो अच्छी तरह अपना पार्ट बजाए। तीसरा, मनी पावर। उसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। परंतु इन 3 पावर के अलावा एक चौथा भी पावर है, जिसको हम स्पिरिचुअल पावर कहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। आध्यात्मिक शक्ति हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी भर देती है। मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत ही कलाकारों की सेवा करने का मौका मिला है। मुंबई में जहां विले पार्ला जुहू स्कीम में यह सेंटर है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ बहुत ही आर्टिस्ट हमारे आजू बाजू में रहते हैं। मैं आपको हमारा अनुभव मिली तो मैं कई आर्टिस्ट से हूँ, पर मैं दो चार का अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले 1975 में मुझे भरत व्यास जी से मिलना हुआ। मुझे हमारे हेडक्वार्टर से हमारी दादी जी ने कहा कि आप मेडिटेशन के ऊपर थोड़े गीत बनवाओ, तो मैं भरत व्यास जी के पास गई। उन्होंने हमने सारा सुनाया कि हम मेडिटेशन के पहले गीत रखते हैं, संगीत को हम प्राधान्य देते हैं, क्योंकि संगीत को नाद ब्रह्म कहा जाता है। तो उन्होंने कहा जरूर मैं बना दूंगा, और उस समय हमने चार गीत उनसे लिखवाए जो आज भी मैं कहेंगी हजारों सेंटर पर सुबह 7 बजे हमारे प्रवचन के पहले वो गीत सुनाया जाता है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से गीत प्रेम से लिख दिया कि अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। और उस समय में महेंद्र कपूर जी से उन्होंने गवाया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में महेंद्र कपूर को इंट्रोड्यूस करने वाले कवि भरत व्यास जी थे। तो भरत व्यास जी ने उस समय हमें बहुत अच्छा ये HMV का रिकॉर्ड बना दिया। बाद में तो उन्होंने हमारे कई गीत लिखे, और उनके बेस्ट फ्रेंड हमारे नेशनल पोएट कवि प्रदीप जी थे, तो उन्होंने भी वो सेंटर पर लेके आए। कवि प्रदीप जी से हमारा बहुत अच्छी तरह मिलना हुआ, तो हमने उनको भी कहा कि प्रदीप जी आप हमें गीत लिख दीजिए। कवि प्रदीप जी हमेशा मुझे कहते थे कि देखो जब मुझे लिखना होगा तब ही मैं लिखूंगा। वो हमेशा हंस के कहते थे कि जंगल में कोयल को टहुकना है तभी वो टहुकती है, तो मैं भी ऐसा हूँ, जब मेरे को आएगा मैं लिख के दूंगा। फिर एक बार वो रोज शाम को हमारे पास आते थे, अपने राजयोग सेंटर के बाजू में ही आप रहते थे, तो रोज शाम को आके हम 5-6 लोगों के साथ बैठते थे। उनसे हमें इतना सीखना मिला है, उनके पास हिंदी डिक्शनरी के इतने वर्ड जो मैं आप लोगों को क्या बताऊं। एक बार वो बैठे थे तो बैठे बैठे मेरे को कहने लगे कि तेरे को पता है मैंने गीत लिखा है, हिमालय की चोटी से हमने ललकारा है। क्यों लिखा? मैंने कहा नहीं। बोला ये आजादी के लिए मैंने ये लिखा था। फिर दूसरी बार एक बार मेरे को कहा कि तेरे को पता है मैंने ये गीत लिखा था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये क्यों मैंने कमाल शब्द मैंने क्यों लिखा पता है? मैंने कहा नहीं पता है, आप बताइए। तो मुझे कहने लगे मैंने इसलिए लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, क्योंकि गांधी जी ने बिगर खड़ग पी हमें आजादी दिलाई, बिगर तलवार आजादी दिलाई, माना सत्य और अहिंसा से हमें आजादी दी। तो हमेशा वो हमें एक्सप्लेनेशन देते थे, तो मैंने भी बात बात में उनको कहा कवि प्रदीप जी आप हमें भी एक पिताश्री जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर है ब्रह्मा बाबा, उनके लिए भी आप मुझे गीत लिख दीजिए ना, उनका 18 जनवरी पर स्मृति दिन अभी आ रहा है। तो वहां बैठे बैठे उन्होंने मेरे को तुरंत एक गीत लिख के दिया, बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन खुशहाल कर दिया, माला माल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। और फिर हमने महेंद्र कपूर जी से ये गीत गवाया जो आज हमारे हजारों सेंटर पर और सभी जगह ये बज रहा है। तो उन्होंने बाद में तो काफी हमें सुंदर सुंदर गीत लिख के दिए। एक बार मैंने कहा कि हमें राजयोग के बारे में आप गीत लिख दीजिए, तो हंसते हंसते मुझे कहने लगे कि मैं तो राजयोग नहीं करता हूँ। मैंने कहा लेकिन आप यहाँ आते तो है ना, आपको योग के बारे में तो पता है। और सचमुच मैं कहूँ उन्होंने इतना सुंदर राजयोग के ऊपर हमें गीत लिख के दिया कि राजयोगी बनो, राजयोगी बनो, राजयोग से जीवन में परम शांति आएगी। राजयोग मानव को संयम सिखाता है, संतुलन आचरण में ले आता है। जो योगी इस योग को साधे इसकी जीवन में सदा ही उन्नति होती है। इनके एक एक शब्दों में इतनी हमेशा क्लैरिटी रहती है कि जिससे आपका योग लग ही जाता है। तो इस तरह से कवि प्रदीप जी से हमें बहुत जीवन में सीखना भी मिला। कई एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, काफी कलाकारों के कनेक्शन में सेवा करने का हमें मौका मिला है और समय प्रति समय मिलना रहता ही है। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने भी राजयोग का अभ्यास का अनुभव किया है। हमने थोड़े सालों पहले आई प्लेज फॉर पीस करके रोटरी क्लब के साथ एक प्रोग्राम किया था। हमारे ऋतिक रोशन जी ने बहुत अच्छी स्पीच दिया और उनके नाना नानी हमारे काफी संपर्क में रहे। उनके नाना का नाम जे ओम प्रकाश, जिन्होंने वुमन एम्पावरमेंट के लिए 12-13 फिल्म बनाई जिसमें उनको अवॉर्ड मिला हुआ है। वो रेगुलर हमारे राजयोग सेंटर पर आते रहते थे। थोड़े समय पहले उन्होंने शरीर छोड़ा और उनके युगल भी रेगुलर सेंटर पर आके राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो मैं तो यही कहेंगी कि हमें भी उनकी विशेषताओं का लाभ मिलता है। हमारे पास ग्रेसी सिंह जी रेगुलर कनेक्शन में रहते हैं, सेंटर पर जाते हैं। सुरेश ओबेरॉय जी, अभी तो लॉकडाउन है, नहीं तो रोज सुबह हमारे मॉर्निंग क्लास में आप आते हैं और बहुत सुंदर आप उनके ही मुंह से कभी सुनेंगे तो इनके बहुत सुंदर अनुभव है कि कैसे राजयोग से जीवन में परिवर्तन आता है। तो मैं आज आपको यही कहेंगी, हमें बहुत खुशी है इस आर्ट एंड कल्चर विंग का सुंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है और बहुत सफलता को प्राप्त करें आगे। और ये मीडिया, ये भी मीडिया में आता है और मीडिया एक ऐसा साधन है जिससे बेहद सेवाएं हो सकती है। तो ऐसे ही हमारी कल्चरल विंग सेवाएं करती रहे। ओम शांति।
हार्टी थैंक्स टू योगिनी दीदी फॉर हर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ सर्विंग द आर्टिस्ट। नाउ प्रोमिनेंट एंड फेमस फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस अनीता राज इज जॉइनिंग अस फ्रॉम मुंबई विथ हर ग्रीटिंग्स। हर नोटेबल रोल्स इंक्लूड प्रेम गीत, जरा सी जिंदगी, जमीन आसमान एंड मास्टर जी। लेट्स लिसन टू हर।
ओम शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मेरा नाम अनीता राज है। हम सब जानते हैं कि हम एक बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वक्त है, गुजर जाएगा। हमारे पास ब्रह्म कुमारी की स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, उन्हें सुनिए जो यूट्यूब पे भी है और देखिए आपका करेज कैसे बढ़ता है। सो माय फ्रेंड्स, be happy, stay blessed, be positive and have lots of courage. Om Shanti.
Thank you, Sister Anita, for your sweet gesture. अब गीत संगीत के माध्यम से स्वागत करने हमारे साथ हैं मधुरवाणी ग्रुप फ्रॉम माउंट आबू. गीत के बोल हैं आज की तस्वीर में मूल्यों का रंग भरें.
आज की तस्वीर में मूल्यों का रंग भरना है. ऐ कलाकारों तुम्हें कल्याण जग का करना है. आज की तस्वीर में मूल्यों का रंग भरना है. ऐ कलाकारों तुम्हें कल्याण जग का करना है. आज की तस्वीर में अपनी सुंदर सोच से सबके सब संकट हरे. अध्यात्म शक्ति से स्वयं में ऐसी हम शक्ति भरे. अपनी सुंदर सोच से सबके सब संकट हरे. अध्यात्म शक्ति से स्वयं में ऐसी हम शक्ति भरे. विश्व सेवा में समर्पित निज कला को करना है. ऐ कलाकारों तुम्हें कल्याण जग का करना है. आज की तस्वीर में वर्तमान चुनौतियों में आपकी बड़ी भूमिका. पुकार है आकाश का, आह्वान है इस भूमि का. वर्तमान चुनौतियों में आपकी बड़ी भूमिका. पुकार है आकाश का, आह्वान है इस भूमि का. कल को दे आकार स्वर्णिम, आज गुणों से सवरना है. ऐ कलाकारों तुम्हें कल्याण जग का करना है. आज की तस्वीर में मूल्यों का रंग भरना है. ऐ कलाकारों तुम्हें कल्याण जग का करना है. आज की तस्वीर में
कलाकारों के जीवन को प्रेरित करते इस खूबसूरत गीत के लिए मधुरवाणी ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया. अब हमारे साथ जुड़ रही हैं बहुत ही मधुर और सर्व की प्रिय गायिका, इंडियन प्लेबैक सिंगर अन्वेषा. अपनी छोटी आयु से संगीत कला को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और आपने 13 वर्ष की उम्र में कई प्रसिद्ध संगीत के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसे हम सब ने देखा और सराहा। फेमस म्यूजिक शो अमूल वॉइस ऑफ इंडिया, छोटे उस्ताद और आप रनर अप रहे। अपनी शुभकामना और अनुभव हमारे साथ साझा कर रही हैं अन्वेषा।
मैं अन्वेषा। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी अप्रोच है जीवन की जो आपको और आपकी सोच को एक नई दिशा देती है, और इस रास्ते पर चलकर ना सिर्फ आपको फायदा होता है बल्कि आपके साथ जुड़ने वाले हर व्यक्ति इसका फल महसूस कर पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और एक कलाकार होने के नाते मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर आर्ट फॉर्म में, वो म्यूजिक हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, कविता यानी पोएट्री हो सकती है, कोई भी कला में एक अजीब सी शक्ति होती है जिसके माध्यम से अगर हम कोई महत्वपूर्ण मैसेज आपको देना चाहे तो दे सकते हैं, और वो मैसेज का असर बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज एक ई कॉन्फ्रेंस लेकर आ रही है आप सबके लिए। मैं चाहूंगी कि आप सब इस कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़िए। इसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम किसी भी कला के माध्यम से एक मैसेज, या मैसेज भी नहीं, मैं ये कहूंगी कि स्पिरिचुअल वैल्यूज इंस्टिल कर सकते हैं। तो ये सब हम जान पाएंगे अगर हम इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे तभी। तो इसलिए मेरी विनती है कि इसका हिस्सा बनिए और एक्सपीरियंस दिस वंडरफुल कॉन्सेप्ट। प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज में जो भी मेंबर्स, जो भी सदस्य इसके पीछे दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को आप सबके सामने लाने के लिए, उन सब के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको अपने इस मकसद में जरूर सफलता प्राप्त होगी।
थैंक यू सिस्टर अन्वेषा। अब सबके जीवन को खुशी से भरने वाले, सबको हंसाने वाले कॉमेडियन आर्टिस्ट किशोर भानुशाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर भानुशाली इज एन इंडियन एक्टर एंड स्टैंड अप कॉमेडियन, नोटेबल फॉर हिज वर्क्स इन हिंदी फिल्म्स एंड टेलीविजन सीरियल्स। ही हैज ए लाइकनेस टू लेट बॉलीवुड एक्टर देवानंद। लेट्स लिसन टू किशोर जीज एक्सपीरियंस।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर भानुशाली, आपका देवानंद जूनियर। भाभी जी घर पे है और हप्पू सिंह की उल्टन पलटन का कमिश्नर रेशमपाल सिंह। इस वक्त मैं हप्पू सिंह की उल्टन पलटन की शूटिंग कर रहा हूं। दोस्तों, आज की तारीख में हर शख्स बहुत ही परेशान है, तकलीफों से घिरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, समस्याएं हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है। कुछ बातें मेरे साथ भी हुई, ऐसा वाक्य मेरे साथ भी हो चुका है। कुछ साल पहले मैं भी काफी परेशान था, तब मेरी बहन ने मुझे एक रास्ता सुझाया, गीतांजलि ने। उसने कहा आपको अगर मन की शांति चाहिए तो आपको ब्रह्म कुमारी जाना होगा, वो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई है, आबू में है ब्रह्म कुमारी, वहां आपको जाना है। तो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों चले गए। वहां दयाल जी भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने, दयाल जी भाई ने बहुत हमारी खातिरदारी की, बल्कि पूरा आबू भी हमको घुमाया। वहां रहने खाने पीने की हर व्यवस्था है। वहां जो मन की शांति मुझे मिली वो कहीं नहीं मिली आज तक। वहां योग सिखाया जाता है, योग की प्रक्रिया बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से सिखाई जाती है, राजयोग, और उससे आपको इतना मन प्रफुल्लित हो जाता है, इतना मन शांत हो जाता है कि आपको लगता है कि बस आप कहां आ गए हो, आप प्रभु में लीन हो जाते हो, बस आपको चारों तरफ प्रभु ईश्वर ही दिखाई देता है। तो मैं बार बार जाना चाहूंगा, हर साल मुझे जाना है, आबू में जाऊंगा ब्रह्म कुमारी में। आप सबसे ये निवेदन है कि प्लीज आपको अगर परेशानियां है, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, एक बार आबू चले जाए ब्रह्म कुमारी में, वहां राजयोग सिखाया जाता है और इतने आसान तरीके से सिखाया जाता है कि आप तुरंत सीख जाते हो, ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। तो सबसे गुजारिश है, सबसे ये निवेदन है, विनती है कि एक बार ब्रह्म कुमारी से जरूर आप मुलाकात लें आबू में। थैंक यू वेरी मच।
मेनी मेनी थैंक्स जूनियर देवानंद जी का. नाउ आई एम प्रोफाउसली इलेटेड टू टेक एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस अवर रिनाउंड इंटरनेशनल मीडिया पर्सनैलिटी डॉक्टर संदीप मारवा फ्रॉम दिल्ली. डॉक्टर संदीप मारवा इज द फर्स्ट पर्सन टू हैव बीन ऑनर्ड विथ 700 नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, हु होल्ड्स 7 रिकॉर्ड्स टू हिज नेम एंड ऑल्सो हैज बीन अवॉर्डेड विथ 7 डॉक्टरेट्स. ही इज द फाउंडर ऑफ नोएडा फिल्म सिटी एंड मारवा स्टूडियोज एंड एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, नाउ वन ऑफ द 10 बेस्ट फिल्म स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड. ही इज नाउ द चांसलर ऑफ AAFT University of Media and Arts and has been appointed as the Chief Scout for India by President of India. I would like to call Brother Sandeep Marwa to share his valuable experiences.
ज्ञान सरोवर आश्रम में माउंट आबू पहुंच चुके हैं और बड़ा खूबसूरत माहौल है. वातावरण बहुत शुद्ध है, हवा बहुत ताजा है और एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट पूरे यहां पर प्रवेल हो रहा है जिसको देखकर अत्यंत आनंद और खुशी महसूस हो रही है. हम लोग अभी थोड़ी देर में ही एक मेडिटेशन के इस लेसन को सीखने के लिए जा रहे हैं. आप कितने भी होशियार हों, कितने भी समझदार हों, मुझे लगता है जब भी आप कभी भी किसी नई जगह पे पहुंचते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जब हम लोग यहाँ पहुंचे और ब्रह्मा कुमारी के मेम्बरान जो करीब 8-7 मेम्बरान जो यहाँ हमारा इंतजार कर रहे थे उनके साथ 1-1.5 घंटा की वार्तालाप में हम लोगों ने चर्चा की और स्पिरिचुअलिटी को आध्यात्मिक बातें की और उससे काफी हमारा ज्ञान बढ़ा. समय में आप देखिएगा यही होने वाला है कि सिर्फ आर्ट और कल्चर ही जो है वो पूरी दुनिया को जोड़ेगा.
दैट इज द ओनली लैंग्वेज एंड व्हाई आर्ट कल्चर, इसके पीछे राज है. व्हाई आर्ट कल्चर? बिकॉज आर्ट कल्चर, द लैंग्वेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर इज इमोशन.
कलाकार की जब कला को देखते हैं तो यही निकलता है हृदय से कि इनको तो प्रभु की देन है.
आइए आज के इस शुभ अवसर पर परमपिता परमेश्वर से निवेदन करें कि हे परमात्मा, मुझे अच्छी विचारधारा दे, अच्छी सोच दे, अच्छी भावनाएं दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से मैं इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं. ऐसा मेरा मानना है और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ सहमत हो. मेरी धारणा और यहां की धारणा बिल्कुल मिल गई जब मैंने ये पहली लाइन आपको बताई कि स्वयं विधाता होवे मानव. परमपिता परमेश्वर ने वो सारी शक्तियां, तो वो तो एनर्जी है, अनसीन एनर्जी, लाइट है, जो अनसीन एनर्जी, उसने अपनी सारी शक्तियां मनुष्य को दे दी. GOD गॉड हम बोलते हैं. जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर. एक ऐसी शक्ति जो पैदा भी कर सकती है, चला भी सकती है और खत्म भी कर सकती है. वो सारी शक्तियां परमपिता परमेश्वर ने हमें खुद दे दी और हमें कहा कि जा मैं तुझे देवी देवता का रूप देता हूं, तो कुछ पृथ्वी पे जाके कुछ करके दिखा। और यही बात जब मैं बाकी लोगों से विभिन्न भाषाओं में सुन रहा हूं, विभिन्न शब्दों में सुन रहा हूं, तो मेरा ये जो संकल्प है, ये मेरी जो दृढ़ता है, वो ज्यादा बढ़ गई। तो मैं यहां पर बैठे सभी मेरे भाई बहनों से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि क्यों ना इसको एक ज्यादा विश्वास करके इस बात को पक्का कर दिया जाए कि जब परमपिता परमेश्वर ने वो सारी शक्तियां हमें दी हैं, तो हमें उन शक्तियों का अच्छा इस्तेमाल करने में कहां मुसीबत आ रही है। आइए अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें और ब्रह्म कुमारी के दिए हुए ये सारे प्रवचन और वचन और दिए हुए इनके पाठ, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया तो कोई पाठ ही नहीं है, क्योंकि जितने मैंने अब तक सुबह से पाठ पढ़े उसके अंदर सारी बातें एक अच्छा इंसान बनने के लिए तो कही जाती है। मैं तहे दिल से यहाँ के सभी संस्थापक और संस्था के सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो मान मर्यादा इज्जत शोहरत प्यार मोहब्बत दिया वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। और इसके साथ ही मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ।
लोगों की विचारधारा इतनी फैल चुकी है कि उसको समेटने के लिए मुझे लगता है कि सिर्फ कला ही एक ऐसी चीज है जो सबको मोहब्बत के अंदर बांध सकेगी।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संदीप मारवा। अब हमें सेल्फ रियलाइजेशन कराने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। आप ब्रह्म कुमारी RERF के बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आप एक कुशल वक्ता हैं एवं राजयोग की सुयोग्य शिक्षिका हैं। आप हमें हम कलाकारों का असली परिचय कराएंगी, कौन हूं मैं जो इस जीवन नाटक में तरह तरह के रोल प्ले कर रही हूं। बहुत ध्यान पूर्वक सुनते और समझते हैं अपने असली स्वरूप को जो इन भिन्न भिन्न किरदारों के पीछे छिपा हुआ है।
ओम शांति। विश्व कल्याणकारी शिव परमात्मा की प्रिय संतानों, कला और संस्कृति क्षेत्र से संबंधित अपनी अपनी कलाओं से समाज को गढ़ने में अपना सुंदर सहयोग देने वाले आत्मीय भाइयों एवं बहनों, दर्शक और श्रोता भाई बहनों, आर्ट एंड कल्चर विंग द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में आज हम इस विश्वविद्यालय की जो प्रमुख शिक्षा है राजयोग के संबंधित बातचीत करेंगे। इस विश्वविद्यालय के प्रारंभ काल से ही सत्य ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग हमारी सेवा के मुख्य दो साधन रहे हैं। विद्यालय के पास अनेकानेक योगी योग अभ्यासी भाई बहनों का 84 वर्षों के अनुभवों का बैकग्राउंड है। इस योग अभ्यास से हमें अपने जीवन में जो सुख शांति प्राप्त हुई है, जो हमारी आंतरिक शक्ति और दिव्य गुणों का विकास हुआ है, वो सच्ची मन की शांति, अतींद्रिय सुख, दिव्य गुण और रूहानी शक्तियां आप सबको भी प्राप्त हो, इस शुभ लक्ष्य से इस विद्यालय द्वारा आयोजित हर कार्यक्रम में हम राजयोग सत्रों का आयोजन अवश्य करते हैं। योग शब्द बहुत अलौकिकता, पवित्रता, आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यहाँ जो राजयोग सिखाया जाता है वो कोई शारीरिक हठ दमन की क्रियाएं नहीं है। कोई आप सीख लें और घंटा आधा घंटा प्रतिदिन करते रहे, ऐसी ये क्रिया नहीं है। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है योगी जीवन बनाना। राजयोग जीवन पद्धति है, क्रिया नहीं है। और जब हम योग अभ्यास करते हैं, आंतरिक सुख शांति आनंद का अनुभव करते हैं, जो रूहानियत हमारे में आती है, इससे हमारी हर प्रवृत्ति में, हर कृति में, हमारी हर रचना में वो दिव्यता उसमें आती है। तो योग शब्द का अर्थ है मिलन, जोड़, संबंध। इसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसलिए योग अभ्यास शुरू करने से पूर्व तीन बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक है योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं कौन हैं? साधक को अपना वास्तविक परिचय होना चाहिए। दूसरा है साध्य, हमें किससे योग लगाना है, वो परम शक्ति परमात्मा कौन है। और तीसरा है साधना, किस विधि से योग अभ्यास करना है। आज के इस सत्र में मैं साधक हम योग अभिलाषी स्वयं कौन है, हमारा वास्तविक परिचय क्या है, जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें बताया है, वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। हर इंसान को ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और आखिर हमें कहाँ जाना है। हर धर्म में इस बात को महत्व दिया गया है कि नो थाई सेल्फ, खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। आज इस जिज्ञासा का वास्तविक उत्तर आपको मिलेगा। जबकि हम सभी अपने शारीरिक स्वरूप से अपने आप को जानते हैं, हम अपना पारिवारिक परिचय भी जानते हैं, हम अपना शैक्षणिक, व्यावसायिक, सामाजिक रूप से भी अपना परिचय जानते हैं। और जब हम आपस में मिलते हैं तो वही परिचय हम एक दो को बताते हैं कि मैं मिस्टर फलाना हूँ, फलाने का बेटा हूँ, ऑफिसर हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मीन हूँ, गुजराती हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ। इस प्रकार से ही हम एक दो का परिचय देते लेते हैं। स्पष्ट है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए शरीर भान में रहते हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं साधारण हूँ। शरीर के नाम, रूप, रंग, आयु की कॉन्शियसनेस रहती है। इस प्रकार बॉडी कॉन्शियस हम बन गए हैं, देह अभिमान में आ गए हैं और उसी का परिणाम हम देखते हैं कि आज हमारा जीवन सांसारिक भौतिक बन गया है। हम अपने आप को अपने शरीर से, संबंधों से, शिक्षा से, व्यवसाय से आइडेंटिफाई करते हैं, परंतु हमें गहराई से सोचने की आवश्यकता है कि क्या मैं शरीर हूं। हम शरीर भान में रहते हैं, परंतु क्या मैं शरीर हूं। थोड़ा शांत चित्त से अंतर्मुखी बनकर आप खुद सोचिए, जबकि हम सबको ये पता है कि शरीर हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ एक पुतला है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं, प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर एक ढांचा है। हम जानते हैं कि शरीर तत्वों से बना है, जड़ है। इन आंखों से संसार में जो कुछ आप देख रहे हैं, जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, साधन है, वैभव है, पदार्थ है, एक छोटे स्क्रू से लेकर बड़े से बड़ी मशीन प्रकृति के तत्वों से बनी है। मैटर से बनी है, इसलिए हम उसे मटेरियल कहते हैं। शरीर भी एक मटेरियल है। जैसे ये चीजें जड़ हैं, परिवर्तनशील हैं, नाशवंत हैं, शरीर भी 5 तत्वों से बना जड़ है, नॉन लिविंग है, परिवर्तनशील है। हम हरेक खुद के ही साक्षी हैं। हमारे अपने देखते देखते बचपन से लेकर अब तक हमारा अपना शरीर कितना बदल गया है। तो शरीर परिवर्तनशील है और आखिरकार नाशवंत है, परंतु मनुष्यात्मा, ह्यूमन बीइंग शब्द कहने से तो 2 अस्तित्व सिद्ध होते हैं। एक 5 तत्वों का बना जड़ शरीर जो स्थूल है, हम इन आंखों से देख सकते हैं, लेकिन दूसरी है अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति। जब तक वो चैतन्य शक्ति है, हम सोचते हैं, कर्म करते हैं, अनुभव होता है। जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल जाती है, हम कहते हैं डेड बॉडी। फिर आंखें होते हुए न दिखाई देता है, मुख होते हुए न बोल पाते हैं। हमारे 1-2 के साथ संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। हम तुरंत कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहने लगते हैं कि जल्दी तैयारी करो, जल्दी सबको सूचित कर दो, जल्दी बॉडी को निकालो। हमारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। उस चैतन्य शक्ति को ही आध्यात्मिक भाषा में आत्मा, रूह, सोल कहा जाता है, जिसको स्पिरिट कहते हैं। विज्ञान जिसको कॉन्शियंट एनर्जी कहता है, साइकोलॉजी में जिसको साइकी कहा जाता है, सरल शब्द में हम उसे आत्मा कहते हैं। तो मनुष्य आत्मा, ह्यूमन बीइंग शब्द कहने से दो अस्तित्व सिद्ध हुए, एक पांच तत्वों का बना मानव शरीर और दूसरी अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति जो इस शरीर को धारण करती है। प्रश्न ये है, मैं कौन हूं? सोचिए, मैं कौन हूं? क्या मैं जड़ शरीर हूं या इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति? विवेक से सोचने से आपको स्वतः उत्तर आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो जड़ है, नॉन लिविंग है। मैं जड़ नहीं, मैं सोचती हूं, मुझे इच्छाएं होती हैं, मैं कर्म करती हूं, मुझे अनुभव होता है, मुझे दूसरों के लिए सहानुभूति होती है, हमदर्दी होती है। ये चैतन्यता के लक्षण है। स्पष्ट है कि मैं चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा हूं। सुनने में ये बात बड़ी सामान्य आपको लगती होगी, परंतु ये मूल सत्य है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं, हम श्रद्धांजलि देने जाते हैं, कौन से शब्द बोलते हैं, किन शब्दों में श्रद्धांजलि देते हैं? कि उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा की सदगति हो। अब आप देखिए, शरीर छोड़कर जाने वाली गई कौन? आत्मा। शरीर तो यहीं पड़ा है, गई कौन? चैतन्य शक्ति आत्मा। उस आत्मा के लिए हम कहते हैं कि शांति मिले, उनके सदगति हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि शरीर छोड़ने पर हम कहते हैं उस आत्मा को शांति मिले, पर शरीर में है, जीवन में है, हम अपने आप को देह ही समझते रहते, बॉडी कॉन्शियस बने रहते हैं। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है कि दुनिया भर की इंफॉर्मेशंस रखने वाले हम अपने आप को ही नहीं जानते। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का मूल प्रथम सत्य स्वयं के बारे में यही है कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। राजयोग का प्रथम अभ्यास है आत्म स्मृति में रहना, आत्म दृष्टि से देखना, आत्म चिंतन का अभ्यास। जैसे खुद को देह समझते रहने से हम बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, पर रियलिटी हम आत्मा है। इसलिए हमें सोल कॉन्शियसनेस को अपनी वास्तविकता में स्थित होने के लिए हमें बार बार आत्मस्मृति में रहना होगा। हरेक को आत्मदृष्टि से देखना है तो शरीर के आधारित जो डिफरेंसेस हमारे में क्रिएट होते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, हम युवा हैं, ये बूढ़े हैं, मैं सुंदर हूं, ये तो साधारण है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस पर आधारित सभी डिफरेंसेस, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये भारतीय है, हम चाइनीज हैं, हम इन सारे डिफरेंसेस को खत्म कर सकते हैं। इस एक अवेयरनेस की जीवन में आवश्यकता है। तो हमारा वास्तविक परिचय है कि हम एक आत्मा है और आत्मा अभौतिक है, हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। शरीर धारण करने के बाद मस्तक में स्थित होकर आत्मा बॉडी को चलाती है। ब्रेन बॉडी का मेन कंट्रोलिंग ऑफिस है। आत्मा चूंकि कंट्रोलर है इसलिए मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। यही कारण है भक्ति में हम यहां तिलक करते हैं, हम यहां तीसरा नेत्र दिखाते हैं, यहां हम तिलक नहीं करते हैं, हम खुद को आत्मा समझते हैं, हरेक को आत्मदृष्टि से देखते हैं। थोड़ा और विस्तार से देखें तो शरीर पंच कर्मेंद्रियों से बना है। आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां हैं मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा की संकल्प शक्ति को मन कहते हैं। मन के विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं और निर्णय के बाद जो कर्म करते हैं हर कर्म का प्रभाव आत्मा में जो संचित होता है वो प्रभाव जब दृढ़ीभूत हो जाता है हम उसे संस्कार कहते हैं। मैं आत्मा सोचती हूं, मैं निर्णय करती हूं, मैं कर्म करती हूं, कर्मों के हिसाब मुझ आत्मा में संचित होते हैं। और आप जानते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तो और कुछ साथ नहीं ले जाती, कर्मों के संस्कार साथ ले जाती, और जैसे संस्कार ऐसी आत्मा की गति और स्थिति बनती है। आज परिणाम हम देख रहे हैं आत्मविस्मृति के कारण विकृति उत्पन्न हुई है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये नेगेटिव टेंडेंसीज डेवलप हो गई है और उनके वश कर्म, और इसलिए संस्कार भी आप देखिए कोई काम वासना के वश है, कोई क्रोध के वश है, कोई लोभ के वश है, कोई अभिमान के वश है। अगर हम इन संस्कारों को बदलना चाहते हैं, हमें एक और सत्य बुद्धि में रखना है। आज भल हम आत्माएं दुखी अशांत पतित भ्रष्ट बन गई है, कामी क्रोधी अभिमानी बन गई है, पर ये हमारी ओरिजिनल नेचर नहीं है। ओरिजिनली हम शुद्ध है, सत्य है, शांत है, पवित्र है, आनंद स्वरूप है। आप सब तो अनुभवी हैं कि हरेक अपने जीवन में क्या चाहते हैं। हमें हरेक को जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान शक्ति चाहिए, क्योंकि वो हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज है। पर बॉडी कॉन्शियस बनने से वो क्वालिटीज में विकृति आ गई। इसलिए जितना हम सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे, हम अपने ओरिजिनल क्वालिटीज को फिर से इमर्ज कर सकेंगे। आप सब अनुभवी हैं, वैरायटी रोल्स आप प्ले करते हैं, विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, पर उसके साथ हमारे चेहरे की मुस्कान, हमारे मन बुद्धि की एकाग्रता उस रोल के प्रति, और जैसा गीत ऐसे हाव भाव कितने इम्पोर्टेंट हैं, जो आत्मस्थिति से कनेक्टेड है। तो सुख शांति आनंद प्रेम कोई बाहर से हमें नहीं मिलते हैं, वो कोई चीजें नहीं हैं जो हम पैसे से प्राप्त कर लें, वो हमारी इनहेरेंट क्वालिटीज है। इसलिए हमें भीतर जाना होगा, उस अंतर्मुखी बनना, खुद के आंतरिक वास्तविक आत्मस्वरूप के प्रति एकाग्र होना। ऑटोमेटिक आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको अपने आप में ही शांति का अनुभव होगा, अपने आप में ही आनंद का अनुभव होगा। और जब आप स्वयं के वास्तविक स्वरूप के प्रति एकाग्र हैं, तो ऑटोमेटिक जो कार्य आप करेंगे वहां भी एकाग्र होकर उस पात्र को जीकर बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो कुछ इस सत्य ज्ञान को बुद्धि में रखकर कि हम सभी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड ड्रामा में वैरायटी रोल्स प्ले कर रहे हैं, हमारे लिए ये सृष्टि एक रंगमंच है, ये हमारा घर नहीं। हमारा असली घर इस दुनिया से दूर शांति धाम है, जिसको परम धाम, मुक्ति धाम, सोल वर्ल्ड, साइलेंस वर्ल्ड कहते हैं। ये टॉकी वर्ल्ड है, वो साइलेंस वर्ल्ड है। तो कुछ क्षणों के लिए हम आत्मचिंतन का अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन सुबह शाम कुछ क्षण आप साइलेंस में बैठकर स्वयं के आत्म स्वरूप के प्रति फोकस होकर सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, अपनी रियलिटी को रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो हमें अपने ही स्वरूप में सुख आनंद अनुभव होता है। तो मैं चाहूंगी आप सभी जहां भी बैठे हैं, व्यवस्थित बैठ जाइए, फिजिकली रिलैक्स होके बैठे, परंतु मेंटली अटेंटिव होकर बैठे कि ये 5 मिनट और सभी बातों से हम अलग हो जाएं। मैं कुछ कमेंट्री के रूप में सजेशंस दूंगी, आपको मुख से नहीं बोलना है, मन से फॉलो करना है। उस थॉट को रिवाइज करें, अर्थ को रियलाइज करें और उस अनुभूति में, फीलिंग्स में स्थित हो जाए। यह है राजयोग का प्रथम अभ्यास। कुछ क्षणों के लिए सभी बातों से अलग हो जाए। आसपास की व्यक्तियों से, साधनों से, परिस्थितियों से साक्षी बन जाए। स्वयं के मस्तक बीच अपने ज्योति बिंदु, चैतन्य स्वरूप, आत्म स्वरूप के प्रति केंद्रित हो जाइए। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक, इन कर्मेंद्रियों का कंट्रोलर हूं। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं इस शरीर से अलग दिव्य ज्योति बिंदु, अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, ये मेरा घर नहीं है, मेरा असली घर इस दुनिया से दूर 5 तत्वों से पार शांति धाम। अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व है वो। मैं आत्मा उस ब्रह्म लोक की निवासी हूं। मैं अति सूक्ष्म बिंदु आत्मा अपने आप में एक चैतन्य बीज जिसमें अपार शक्तियां अखुट दिव्य गुण सुख शांति आनंद प्रेम की अलौकिक अनुभूतियां समाई हुई। मैं शांत आत्मा हूं, मैं शुद्ध प्रबुद्ध हूं, अपने ओरिजिनल निज स्वरूप में मैं सत्य हूं, नित्य हूं, चैतन्य आनंद स्वरूप। जैसी ही मैं खुद को आत्मा समझती हूं, मन शांत होने लगता है, बुद्धि शुद्ध शीतल होने लगती है, मैं आत्मा हूं। पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइटर, मैं एक दिव्य ज्योति चैतन्य शक्ति,
गीता बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमको हमारे वास्तविक स्वरूप से अवगत कराया। वी थैंक ऑल अवर एमिनेंट स्पीकर्स ऑफ टुडे सेशन फॉर एनलाइटनिंग अस। वी विल मीट अगेन इन द इवनिंग एट 6:30। स्पेशल थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। नमस्ते, ओम शांति।
जीवन सुर ताल लय में सजा एक अमर संगीत है। शब्दों में पिरोया महाकाव्य तो कभी रंगों का तिलस्म है जीवन। बिन कला के अकल्पनीय है जीवन। ब्रह्मा कुमारी इसका कला संस्कृति प्रभाग लेकर आया है माउंट आबू हेडक्वार्टर से 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस। चुनौतियों के समय में कलाकार की भूमिका, रोल ऑफ आर्टिस्ट इन प्रेजेंट चैलेंजेस। 1 अगस्त शनिवार सुबह 10 बजे और शाम 6:30 बजे, 2 अगस्त रविवार सुबह 10 बजे और शाम 6:30 बजे। देखिए अवेकनिंग चैनल पर टाटा स्काई 1084, जियो टीवी 1060। आप इस कॉन्फ्रेंस को YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं अवेकनिंग TV/live पर।